1967 की वाणी चल रही थी, पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है, राम को त्रेता में डाल दिया है, ये सब दंत कथाएं हैं। हनुमान के लिए कहते हैं पवन से पैदा हुआ, ये कितनी नॉनसेंस बातें हैं। कोई पवन से पैदा होता है क्या? पवन माना क्या? हवा। हवा की औलाद हनुमान। हवा किसे कहते हैं? कोई आत्मा प्रवेश होती है तो क्या कहते हैं?
हवा प्रवेश।
हवा विहार का असर है, है? कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी है? और उससे जो साकार रूप बनता है उसको नाम दे दिया
पवन
हनुमान। पवन सूत्र नॉनसेंस बातें, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी यही बनेंगे। अभी तुमको समझाया रंग क्या है और राइट क्या है। बाप तो सब बातें सिद्ध करके बताते हैं, ये सब रंग बातें। तुमने जो कुछ भी सुना कि राम की सीता चुराई गई, कहां से चुराई गई? राम को तो त्रेता में दिखाते हैं, अब त्रेता में रावण कहां से आ गया? तो कहां की बात होगी? जो सीता को ले गया वो त्रेता में रावण कहां से आया? फिर कहते हैं बंदरों ने पुल बांधा, पत्थरों का पुल बांधा। अब पत्थरों की बात होगी क्या? पत्थर बुद्धि कोई आत्माएं होगी जो एक के पीछे एक लगाई गई और उनका पुल बांध दिया गया। देखो क्या बातें बनाई है। कहते हैं बंदरों की सेना ली। अब बंदर पत्थर कैसे उठावेंगे? अच्छा राम की तो बंदरों की सेना थी, फिर वहां रावण कहां से आया? अभी बाप राइट बात बता रहे, रावण की सेना कहां है? ये सारी दुनिया में रावण की सेना है। और जो बंदर होते हैं वो लड़ाई किसके साथ करते हैं? बंदरों की लड़ाई किससे होती है? बंदरों की लड़ाई तो बंदरों से ही होती है। इसका मतलब जो बंदर संप्रदाय थे
वापस
कहाँ? एडवांस पार्टी में या बेसिक पार्टी में? एडवांस पार्टी। वो बंदर संप्रदाय में ही अलग अलग धर्मों की आत्माएं थी, भांति भांति के बंदर होते हैं ना। एक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं। तो भांति भांति के धर्मों से कनेक्टेड बंदर संप्रदाय की आत्माएं आपस में ही लड़ाई कर पड़ती है। बाप समझाते हैं ये अभी सारा ही रावण राज्य, ये पतित राज्य है, बंदरों की दुनिया है। बंदरों को कितना पतित दिखाते हैं, आधा कल्प से ये राज्य शुरू होता है और रावण को दस सिर दिखा दिए। बाप समझाते हैं ये पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के हैं। दस सिर जो रावण के दिखाए हैं वो माया रूपी रावण के पांच विकार, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी कोई तो होंगे 100%। नंबर बार तो होते ही है। इसी तरीके से स्त्री के पांच विकार, स्त्री को किस रूप में दिखाया है? प्रकृति के पांच तत्वों के रूप में स्त्री को दिखाया है, पुरुष के पांच विकारों के रूप में रावण को दिखाया है। स्त्री के पांच रूप कौन से? पांच तत्व, पंच महाभूत और विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु को भुजाएं दिखाई, रावण को सिर दिखाई। क्यों? रावण अनेक मते चलाता है और विष्णु अनेक भुजाओं से सहयोग देता है। रावण मतभेद पैदा कर देता है और विष्णु मतभेद पैदा नहीं करता है। क्या करता है?
सहयोग देता
है, अनेक भुजाओं से, अनेक सहयोगी साथियों से सहयोग देता है। सहयोग कौन देगा? पवित्र देगा या अपवित्र देगा? पवित्र सहयोग देगा और अपवित्र वो विघ्न पैदा करेगा। इम्प्योरिटी जहाँ होती है वहाँ सहयोग नहीं होता, जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सहयोग होता है। 11 फरवरी 1967 वाली का दूसरा, ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते जो 10 सिरों वाले हो,
नहीं।
4 भुजाओं वाले हो। ये तो सिर्फ रूपक बनाया है कवियों ने, क्या चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, ये उनके रूपक हैं, ये उन्होंने रूप बनाया है समझाने के लिए कि कोई 4 आत्माएं हैं भुजा रूपी, जो आपस में संस्कार मिला करके प्योरिटी से यूनिटी बना करके भगवान की विशेष सहयोगी बन जाती। तो ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, ये एम ऑब्जेक्ट है तुम बच्चों की, क्या नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं, तो राम सीता बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य है विष्णु द्वारा पालना। तो राम का जो जन्म दिखाते हैं वो भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं, और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं उनको भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं, बाकी विष्णु अलग से कोई चीज
नहीं
होता नहीं। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं, कृष्ण को तो 2 भुजाएं ही दिखावेंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। बाप हर एक बात समझाते हैं, ये सभी है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान आया, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, क्यों? शिव का नाम शिव ही है, रुद्र भी है,
रुद्र ज्ञानी यज्ञ।
क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी को रुद्र कहेंगे क्या? बिंदी को रुद्र नहीं कहेंगे, वो बिंदी जब रौद्र रूप धारण करती है किसी शरीर के द्वारा तो उसको नाम दिया जाता है
रुद्र।
तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ने इस ज्ञान को रचा है। कब रचा है? संगम युग में भी कबर अच्छा है, यज्ञ के आदि में ही रचा, माना यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई, रौद्र रूप धारण कर लिया। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है वा शिव का है? अरे जिसने ज्ञान का बीज डाला होगा तो वही बाप घर का कहा जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि बीजारोपण कोई और करे और खेती कोई और काट ले, जो बीज बोएगा सो काटेगा। तो ये रुद्र ज्ञानी यज्ञ यज्ञ के आदि से ही शिव बाप का है, शिव बाप ही रौद्र रूप धारण करता है। लेकिन इसके लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप पूछते हैं, ये यज्ञ किसका है?
शिव बाप का।
रुद्र का है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। उन्होंने तो समझ लिया गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्म है। गीता का भगवान साकार रूप में किसको समझते हैं?
ब्रह्मा बाबा को।
ब्रह्मा को समझते हैं, कृष्ण की शोल को समझते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि यज्ञ के आदि से ही ये ज्ञान यज्ञ की अथॉरिटी शिव बाबा है, कोई दूसरा मनुष्य मात्र
वो नहीं
हो सकता। यज्ञ के आदि में तन किसका था जिसने ज्ञान का बीज रोपण बोया? तो जिसने शुरुआत, जिसने आदि की, वो अंत करेगा। बाकी तो मुकर्रर रथ नहीं कही जाएगी। मुकर्रर रथ वो जो आदि भी करे और अंत भी करे। तो शिव परमात्मा ही कहते हैं, ये शंकर देवता है, शंकर भी कोई भगवान
नहीं
है। इन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि जो भी देवताएं हैं, उन देवताओं ने बाप समान स्थिति स्टेज को कोई ने नहीं पाया। पहले किसने पाया? जिसने बाप समान स्टेज निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाई, उसी का नाम शिव के साथ मिलाई है। और कोई देवता का नाम शिव के साथ मिलाती नहीं है। विष्णु को भी नहीं मिलाते, ब्रह्मा को भी नहीं मिलाते। ऐसे नहीं कहते शिव विष्णु, शिव ब्रह्मा, क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। तो नाम मिला करके एक कर दिया, उसका कारण क्या हुआ? काम करके दिखाया। नाम का आधार क्या है?
काम।
जिसने काम करके दिखाया, उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया। एनसंस कंपनी बनाते हैं ना, तो बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। तो इन्होंने शिव शंकर को मिला करके इकट्ठा कर दिया है। अभी बाप कहते हैं, दोनों आत्माएं इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? कैसे होंगी इकट्ठी?
आत्मा
सोल में, कोई सोल प्रवेश करती है तो दोनों एक ही पर्सनालिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहेंगे इसमें ये सोल आई, लेकिन दोनों मिलकर के इकट्ठे तो नहीं होते। दोनों के संस्कार स्वभाव तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो शिव आकर के लक्ष्य देते हैं, तुम्हें बाप समान स्टेज को धारण करना है। तो बाप तो है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी पहले बनना पड़े। जो होते स्वर्ग, जो पहले करे स्वर्ग। तो देखो, अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हैं, हमने इसमें प्रवेश किया। क्या? बाप कहते हैं, हमने इसमें प्रवेश किया। हमने माने दो हुए या एक हुआ?
दो हुए।
कौन कौन दो? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमने इसमें प्रवेश किया है। तो तुम कहते हो बाप दादा, तुम्हारा कहना है कि ये बाप है, ये दादा है। कब कहते हो? दूसरा जन्म जब तुम लेते हो, तुम किसको कहा? प्रजापिता को। तुम जब दूसरा जन्म लेते हो तो तुम बाप कहते हो शिव को और दादा कहते हो
ब्रह्मा
को। तुम कहते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कि बाप कौन है, दादा कौन है, बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। कौन है बाप दादा?
राम वाली आत्मा।
राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करता है वो है बाप,
और श्री कृष्ण
और कृष्ण वाली सोल वो है दादा। वो फिर कहते हैं शिव शंकर, तुम कहते हो बाप दादा और वो कहते हैं शिव शंकर। शंकर शिव नहीं कहते, शंकर शिव क्यों नहीं कहते? जैसे तुम दादा बाप नहीं कहते हो, दादा को पहले नहीं रखते, शिव को पहले रखते हो। जो बड़ा है उसका नाम पहले, छोटे का नाम बाद। ऐसे ही शिव है बाप, शिव सबका बाप, प्रजापिता का भी बाप है। तो शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तुम कहते हो बाप दादा, तो शिव परमात्मा हो गए वो देवता। क्या? शिव परमात्मा हो गए और वो देवता कौन? शंकर देवता। शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों?
सागर
तो कभी फूटता ही नहीं, और शंकर तो कलयुग के अंत में आकर के फूट जाता है। तो बोला क्योंकि शंकर को भी तो मनुष्य से देवता बनना होता है। मनुष्य ऐसी करनी करे तो क्या बने? नारायण बने। तो वो करनी कौन सिखाता है? शिव की सोल आकर के करनी करना सिखाती है। तो वो भी तो बनने वाला हुआ ना, मनुष्य से देवता बनने वाला हुआ, बनाने वाला तो नहीं हुआ।
मास्टर ज्ञान सागर,
मास्टर ज्ञान सागर बनता है, सदैव होता नहीं है। बनता है या सदैव होता है?
नहीं बनता
है, ज्ञान
है। तो शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु को कहेंगे। ब्रह्मा भी ज्ञान का सागर नहीं है, विष्णु भी ज्ञान का सागर नहीं। वास्तव में ज्ञान का सागर
एक
शिव बाबा है। माना शिव की सोल जब साकार तन में प्रवेश करती है तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर तो एक ही है जिसमें सब नदियां जाकर के समा जाती है अंत में। चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी हो, दुनिया की कोई भी नदी हो, कहाँ जाके समा जाती है?
सागर में समा
जाती। सागर में समा जाती। तो अंत में ये जितनी भी चैतन्य नदियां हैं, जिनकी अभी अभी अलग अलग मतें दिखाई पड़ती हैं, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, अंत में ये कहाँ जाके समा जाएंगे?
सागर में समा जाएंगे।
एक ही ज्ञान सागर में समा जाएंगे, एक ही शिव बाबा में समा जाएंगे। अभी तो क्या है, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग अलाप रहे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सोई विष्णु बनते, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कितने हैं? तो जो भी ब्रह्मा है, जिनके नाम भी ब्रह्मा है, वो सब क्या बनने हैं मिलके?
विष्णु बन जाते हैं।
विष्णु का रूप बनना, कोई दाई भुजा बनेगा, कोई बाई भुजा बनेगा, कोई ऊपर की भुजा बनेगा, कोई नीचे की भुजा बनेगा, कोई उन भुजाओं को चलाने वाला
धड़ बन जाएगा,
चलाने वाला बनेगा। ज्ञान से तुम समझते हो, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्या? कब था विष्णु, कब ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिन दोनों की संस्कार मिले हुए थे, स्वभाव संस्कार एक थे, एक ने कही और दूसरे ने मानी। वो विष्णु रूप था, और जो भी थे सुनने वाले सब ने ये बात मानी। तो कौन कौन थे? प्रजापिता भी था, गीता माता भी थी, उम्र आधे बच्चे भी थी, क्योंकि शिव अकेला तो आता नहीं, वो तो तीन मूर्तियों के साथ है। फिर उनकी बात और किसने किसने मानी?
श्री कृष्ण,
राधा और कृष्ण जो बनने वाले हैं सतयुग में, उन्होंने भी उनकी बात मानी। तो सब के संस्कार मिलकर के एक हो गए। तो विष्णु था ना, वो ही विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला। कब निकला?
आदि में।
आदि में ही निकला ब्रह्मा, दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में। कब से प्रत्यक्ष हुए?
सन 47
जब से शिव ने प्रवेश किया उनमें, तब से वो ब्रह्मा कहे गए। मैं प्रवेश करता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम
ब्रह्मा
पड़ता है। सन 47 से पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम
नहीं पढ़ा,
आज नहीं, कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ?
47-48 क्रांति से।
सन 47 से ब्रह्मा नाम पढ़ा और सन 51-52 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पढ़ा। उससे पहले तो कोई ब्रह्मा को भी नहीं जानता था और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को भी नहीं जानता। तो ज्ञान सागर न ब्रह्मा को कहेंगे न विष्णु को कहेंगे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकते जब तक बाप आकर न बना बता दे। ब्रह्मा को सासों में हाथों में सास दिखाए, क्या कोई ऐसा चित्र है कोई देवता का जिसके हाथों में सास दिखाए?
ब्रह्मा के चार
ब्रह्मा को शास्त्रों में हाथों में सास दिखाए। अब शास्त्रों का सार तो बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा थोड़ी सुनाते हैं। क्या जो भी शास्त्र बने उन शास्त्रों का सार किसने सुनाया? उन सार सुनाया
नहीं, राम बाप दोबारा सुनाया।
जो सार रूप होगा सो सार सुनाएगा, जो विस्तार रूप होगा वो क्या करेगा?
विस्तार सुनाएगा,
विस्तार करेगा। तो शास्त्रों का सार बाप आकर सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं?
बाप
सुनाते हैं। ब्रह्मा तो
नहीं,
माँ तो बड़ी माँ है,
बाप के द्वारा।
माँ जो है वो विस्तार है या बाप विस्तार है?
नहीं, माँ विस्तार।
सार कौन है और विस्तार कौन है?
माँ है विस्तार,
सार माँ है और विस्तार बाप है। धरणी किसे कहा जाता है? माताओं। दुनिया में जब सत्यु की शुरुआत होती है तो धरणी छोटी होती है या बड़ी होती है?
छोटी होती है।
छोटी होती है, फिर बाद में
विस्तार
को पाती जाती है। कलयुग के अंत में धरणी बहुत विस्तार को पा जाते। जितने जितने बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे माता उतनी ही फैलती फूटती जाएगी। तो ये विस्तार और ये
सार,
वो है बाप और वो है माँ। तो पूछा हम शास्त्रों का सार बाप सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं? कौन सुनाता है?
बाप सुनाते।
ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वो कोई भी यथार्थ चित्र नहीं है, वो है सब भक्ति मार्ग के चित्र। मनुष्य कोई आठ दस भुजा वाले थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। समझाने के लिए रावण का भी अर्थ दिखाया है, आधा कल्प है रावण राज्य, उसको कहते हैं रात। आधा कल्प अज्ञान अंधकार फैलता है, आधा कल्प है राम राज्य दिन। रावण आता है तो रात फैलाता है, राम आता है
तो दिन
होता है। कब से दिन होता है? जब से राम वाली आत्मा संसार में राम के रूप में, राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो राम राज्य शुरू होता है। और जब से रावण वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है दस सिरों वाली, तब से दुनिया में अज्ञान की रात होती है। बाप हर एक बात समझाते हैं। इसमें भी नंबर वन बात है कि बाप को जो सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर फादरहुड कैसे हो सकता है। फादर फादर को कभी वर्षा देते हैं क्या? फिर तो सारे ही फादर हो गए। जब एक एक में बाप व्यापक है तो सारे क्या हो गए? बाप हो गए। अब बाप को बाप से वर्षा मिलेगा क्या? तुम सभी एक बाप के बच्चे हो ना? बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। क्या? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। नहीं, प्रजापिता तो पुरुष है, वो तो दुर्योधन दुशासन का रूप हो गया। जितने पुरुष हैं उनमें से किसी को छोड़ दिया? सब दुर्योधन दुशासन। भले कोई परसेंटेज में 1% होगा, कोई 100% होगा, कोई 50% होगा, कुछ न कुछ दुर्योधन दुशासन की वृत्ति हर पुरुष में रहती जरूर है। कन्या माताओं के लिए तो नहीं कहा, सब कन्या है, सुपनखाएं पूतना है। कन्या माताओं के लिए कहा, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, कोई कोई क्या, कोई कोई सुपनखा पूतना हो। तो कन्या माताओं के लिए तो ऐसे नहीं कहा, लेकिन पुरुषों के लिए 1 to all, A to Z सबको बता दिया क्या? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। बल पुरुषतन में शिव बाप आते हैं, चाहे कृष्ण के अंतिम चोले में आए, चाहे राम के अंतिम चोले में आए, फिर भी उनको टाइटल क्या दिया? दुर्योधन दुशासन। माने उनके द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवा सकते। जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाली विशेष रूप है कन्या माता है, उनके द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं। तो नाम दिया ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। कौन कौन करते हैं? शिव बाप। क्या बिंदी बाप या साकार बाप? बिंदी बाप करते हो तो बिंदी बाप होंगे तो डायरेक्शन कैसे देंगे, मत कैसे देंगे, श्रीमत कैसे मिलेगी? क्या कोई ब्रह्मा, जैसे एक अव्यक्त वाणी में बोला, ब्रह्मा बड़ी तेजी से माला बनाने लगे और शिव बाप मुस्कराने लगे। कई साल पहले की वाणी है, क्यों मुस्कराने लगे है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा समझते थे, बाबा ने बोला है ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी, तो फटाफट माला बनाने लगी। लेकिन माला भी बाप की श्रीमत से बनेगी या किसी मनुष्य की मत से, मनमत से बनेगी? बाप की श्रीमत से ही माला बन सकेगी, बाप की श्रीमत से ही राजधानी स्थापन होगी। कोई चाहे कि हम अपनी मनमत से राजधानी स्थापन कर ले तो राजधानी स्थापन होने वाली नहीं है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा अगर बाप को भूल जाए तो राजधानी धरी की धरी रह जाएगी, कोई भी राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। राजधानी की स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा और तुमको राजयोग सिखाते हैं। दो बातें बताई, क्या क्या? ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना या राजधानी की स्थापना, और तुमको राजयोग सिखाते हैं। क्या तुमको राजयोग भी सिखाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं? अच्छा, तो जिसके द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, विष्णु की विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा को राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। फिर ब्रह्मा राज्य करता है?
नहीं, संगम बन सतयुग
में, सतयुग में करता है। अरे जिसके द्वारा राज, जिसके द्वारा स्थापना हुई विष्णुपुरी की या राजधानी की स्थापना हुई, तो उसको राज्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
मिलना चाहिए
जिसके तो विष्णुपुरी का राजा बनता है ब्रह्मा।
1967 की वाणी चल रही थी पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को द्वापर में दिखाई दिया है, राम को त्रेता में डाल दिया है, ये सब दंत कथाएं हैं। हनुमान के लिए कहते हैं पवन से पैदा हुआ, ये कितनी नॉनसेंस बातें हैं। कोई पवन से पैदा होता है क्या? पवन माना क्या? हवा। हवा की औलाद हनुमान। हवा किसे कहते हैं? कोई आत्मा प्रवेश होती है तो क्या कहते हैं?
हवा प्रवेश
होगा। हवा विहार का असर है, है? कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी है? और उससे जो साकार रूप बनता है उसको नाम दे दिया
पवन
हनुमान। पवन सूत्र नॉनसेंस बातें, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, फिर भी यही बनेंगे। अभी तुमको समझाया रंग क्या है और राइट क्या है। बाप तो सब बातें सिद्ध करके बताते हैं, ये सब रंग बातें। तुमने जो कुछ भी सुना कि राम की सीता चुराई गई, कहां से चुराई गई? राम को तो त्रेता में दिखाते हैं, अब त्रेता में रावण कहां से आ गया? तो कहां की बात होगी? जो सीता को ले गया वो त्रेता में रावण कहां से आया? फिर कहते हैं बंदरों ने पुल बांधा, पत्थरों का पुल बांधा। अब पत्थरों की बात होगी क्या? पत्थर बुद्धि कोई आत्माएं होंगी जो एक के पीछे एक लगाई गई और उनका पुल बांध दिया गया। देखो क्या बातें बनाई है। कहते हैं बंदरों की सेना ली। अब बंदर पत्थर कैसे उठावेंगे? अच्छा राम की तो बंदरों की सेना थी, फिर वहां रावण कहां से आया? अभी बाप राइट बात बता रहे, रावण की सेना कहां है? ये सारी दुनिया में रावण की सेना है। और जो बंदर होते हैं वो लड़ाई किसके साथ करते हैं? बंदरों की लड़ाई किससे होती है? बंदरों की लड़ाई तो बंदरों से ही होती है। इसका मतलब जो बंदर संप्रदाय थे
वापस
कहां? एडवांस पार्टी में या बेसिक पार्टी में? एडवांस पार्टी। वो बंदर संप्रदाय में ही अलग अलग धर्मों की आत्माएं थी। भांति भांति के बंदर होते हैं ना, एक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं, अनेक जाति के बंदर होते हैं। तो भांति भांति के धर्मों से कनेक्टेड बंदर संप्रदाय की आत्माएं आपस में ही लड़ाई कर पड़ती है। बाप समझाते हैं ये अभी सारा ही रावण राज्य, ये पतित राज्य है, बंदरों की दुनिया है। बंदरों को कितना पतित दिखाते हैं। आधा कल्प से ये राज्य शुरू होता है और रावण को दस दिखा दिए। बाप समझाते हैं ये पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के हैं। दस सिर जो रावण के दिखाई है वो माया रूपी रावण के पांच विकार,
कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी कोई तो होंगे 100% नंबर बार तो होते ही है। इसी तरीके से स्त्री के 5 विकार, स्त्री को किस रूप में दिखाया है? प्रकृति के 5 तत्वों के रूप में स्त्री को दिखाया है। पुरुष के 5 विकारों के रूप में रावण को दिखाया है। स्त्री के 5 रूप कौन से? 5 तत्व, पंच महाभूत और विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु को भुजाएं दिखाई, रावण को सिर दिखाई। क्यों? रावण अनेक मते चलाता है और विष्णु अनेक भुजाओं से सहयोग देता है। रावण मतभेद पैदा कर देता है और विष्णु मतभेद पैदा नहीं करता है। क्या करता है?
सहयोग देता
है, अनेक भुजाओं से, अनेक सहयोगी साथियों से सहयोग देता है। सहयोग कौन देगा? पवित्र देगा या अपवित्र देगा? पवित्र सहयोग देगा और अपवित्र वो विघ्न पैदा करेगा। इम्प्योरिटी जहाँ होती है वहाँ सहयोग नहीं होता, जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सहयोग होता है। 11 फरवरी 1967 का दूसरा। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते जो 10 सिरों वाले हो,
नहीं
4 भुजाओं वाले हो। ये तो सिर्फ रूपक बनाया है कवियों ने, क्या तो चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं, ये उनके रूपक हैं। ये उन्होंने रूप बनाया है समझाने के लिए कि कोई 4 आत्माएं हैं भुजा रूपी, जो आपस में संस्कार मिला करके प्योरिटी से यूनिटी बना करके भगवान की विशेष सहयोगी बन जाती। तो ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, ये एम ऑब्जेक्ट है तुम बच्चों की। क्या?
नर
से नारायण बनना,
नारी
से लक्ष्मी बनना। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं, तो राम सीता बनना, ये तुम्हारा लक्ष्य है विष्णु द्वारा पालना। तो राम का जो जन्म दिखाते हैं वो भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं, और कृष्ण का जन्म दिखाते हैं उनको भी विष्णु का अवतार दिखाते हैं। बाकी विष्णु अलग से कोई चीज
नहीं
होता नहीं। विष्णु गुरु को कृष्ण गुरु भी कहते हैं। कृष्ण को तो 2 भुजाएं ही दिखावेंगे ना, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। बाप हर एक बात समझाते हैं, ये सभी है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान आया, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, क्यों? शिव का नाम शिव ही है, रुद्र भी है।
रुद्र ज्ञान यज्ञ,
क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी को रुद्र कहेंगे क्या? बिंदी को रुद्र नहीं कहेंगे। वो बिंदी जब रौद्र रूप धारण करती है किसी शरीर के द्वारा, तो उसको नाम दिया जाता है
रुद्र।
तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ने इस ज्ञान को रचा है। कब रचा? संगम युग में भी कब रचा है? यज्ञ के आदि में ही रचा, माना यज्ञ के आदि से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई, रौद्र रूप धारण कर लिया। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है वा शिव का है? अरे जिसने ज्ञान का बीज डाला होगा तो वो ही बाप घर का कहा जाएगा। ऐसे तो नहीं है कि बीजारोपण कोई और करे और खेती कोई और काट ले। जो बीज बोएगा सो काटेगा। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ के आज से ही शिव बाप का है, शिव बाप ही रौद्र रूप धारण करता है। लेकिन इसके लिए ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप पूछते हो ये यज्ञ किसका है?
शिव बाप का,
रुद्र का है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। उन्होंने तो समझ लिया गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्म है। गीता का भगवान साकार रूप में किसको समझते हैं?
ब्रह्मा बाबा
ब्रह्मा को समझते हैं, कृष्ण की शोल को समझते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि यज्ञ के आदि से ही ये ज्ञान यज्ञ की अथॉरिटी शिव बाबा है, कोई दूसरा मनुष्य मात्र
नहीं
हो सकता। यज्ञ के आदि में तन किसका था? जिसने ज्ञान का बीज रोपण बोया। तो जिसने शुरुआत जिसने आदि की वो अंत करेगा। बाकी तो मुकर्रर रथ नहीं कही जाएगी। मुकर्रर रथ वो जो आदि भी करे और अंत भी करे। तो शिव परमात्मा ही कहते हैं ये शंकर देवता है, शंकर भी कोई भगवान
नहीं है।
इन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने क्यों इकट्ठा कर दिया? क्योंकि जो भी देवताएं हैं उन देवताओं ने बाप समान स्थित स्टेज को कोई ने नहीं पाया। पहले किसने पाया? जिसने बाप समान स्टेज निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाई उसी का नाम शिव के साथ मिलाई है। और कोई देवता का नाम शिव के साथ मिलाती नहीं है। विष्णु को भी नहीं मिलाते, ब्रह्मा को भी नहीं मिलाते। ऐसे नहीं कहते शिव विष्णु शिव ब्रह्मा, क्या कहते हैं? शिव शंकर कहते हैं। तो नाम मिला करके एक कर दिया, उसका कारण क्या हुआ? काम करके दिखाया। नाम का आधार क्या है?
काम।
जिसने काम करके दिखाया उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया। एनसंस कंपनी बनाते हैं ना, तो बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। तो इन्होंने शिव शंकर को मिला करके इकट्ठा कर दिया है। अभी बाप कहते हैं दोनों आत्माएं इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? कैसे होंगी इकट्ठी? सोल में कोई सोल प्रवेश करती है तो दोनों एक ही पर्सनालिटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहेंगे इसमें ये सोल आई, लेकिन दोनों मिलकर के इकट्ठे तो नहीं होते। दोनों के संस्कार स्वभाव तो अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो शिव आकर के लक्ष्य देते हैं तुम्हें बाप समान स्टेज को धारण करना है। तो बाप तो है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी पहले बनना पड़े। जो होते स्वर्ग जो पहले करे स्वर्ग। तो देखो अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया। बाप कहते हमने इसमें प्रवेश किया। क्या बाप कहते हैं? हमने इसमें प्रवेश किया। हमने हमने माने दो हुए या एक हुआ?
दो हुए।
कौन कौन दो? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। हमने इसमें प्रवेश किया है तो तुम कहते हो बाप दादा। तुम्हारा कहना है कि ये बाप है
और
ये दादा है। कब कहते हो? दूसरा जन्म जब तुम लेते हो तुम किसको कहा? प्रजापिता को। तुम जब दूसरा जन्म लेते हो तो तुम बाप कहते हो शिव को और दादा कहते हो ब्रह्म, तुम कहते हो, लेकिन ऐसा है नहीं कि बाप कौन है दादा कौन है, बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। कौन है बाप दादा?
राम वाली आत्मा,
राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करता है वो है बाप,
और श्री कृष्ण
और कृष्ण वाली सोल वो है दादा, वो फिर कहते हैं शिव शंकर। तुम कहते हो बाप दादा और वो कहते हैं शिव शंकर, शंकर शिव नहीं कहते, शंकर शिव क्यों नहीं कहते?
बाप आए तो
जैसे तुम दादा बाप नहीं कहते हो, दादा को पहले नहीं रखते, शिव को पहले रखते हो, जो बड़ा है उसका नाम पहले, छोटे का नाम बाद, ऐसे ही शिव है बाप, शिव सबका बाप, प्रजापिता का भी बाप है। तो शंकर शिव नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। तुम कहते हो बाप दादा, तो शिव परमात्मा हो गए वो देवता, क्या शिव परमात्मा हो गए और वो देवता कौन? शंकर देवता। शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्यों? सागर तो कभी फूटता ही नहीं, और शंकर तो कलयुग के अंत में आकर के
फूट जाता है।
तो बोला क्योंकि शंकर को भी तो मनुष्य से देवता बनना होता है, मनुष्य ऐसी करनी करे तो क्या बने? नारायण बने। तो वो करनी कौन सिखाता है? शिव की सोल आकर के करनी करना सिखाती है। तो वो भी तो बनने वाला हुआ ना, मनुष्य से देवता बनने वाला हुआ, बनाने वाला तो नहीं,
नहीं
हुआ।
मास्टर ज्ञान सागर,
मास्टर ज्ञान सागर बनता है, सदैव होता नहीं है, बनता है या सदैव होता है?
नहीं बनता
है, ज्ञान अर्जित
है। तो शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु को कहेंगे,
नहीं
ब्रह्मा भी ज्ञान का सागर नहीं है, विष्णु भी ज्ञान का सागर नहीं, वास्तव में ज्ञान का सागर
एक
शिव बाबा है। माना शिव की सोल जब साकार तन में प्रवेश करती है तो वो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर तो एक ही है जिसमें सब नदियां जाकर के समा जाती है अंत में, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सरस्वती नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा नदी हो, दुनिया की कोई भी नदी हो, कहाँ जाके समा जाती है?
सागर में समा
जाती है। सागर में समा जाती है। तो अंत में ये जितनी भी चैतन्य नदियां हैं, जिनकी अभी अभी अलग अलग मतें दिखाई पड़ती हैं, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, कोई किससे मिक्स हुई पड़ी है, अंत में ये कहाँ जाके समा जाएंगे?
सागर में समा जाएंगे,
एक ही ज्ञान सागर में समा जाएंगे, एक ही शिव बाबा में समा जाएंगे। अभी तो क्या है, अपनी अपनी डबली,
अपना
अपना राग अलाप रहे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सोई विष्णु बनते, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कितने हैं? तो जो भी ब्रह्मा है, जिनके नाम भी ब्रह्मा है, वो सब क्या बनने हैं मिलके?
विष्णु बन जाते हैं,
विष्णु का रूप बनना है। कोई दाई भुजा बनेगा, कोई बाई भुजा बनेगा, कोई ऊपर की भुजा बनेगा, कोई नीचे की भुजा बनेगा, कोई उन भुजाओं को चलाने वाला
धड़ बन जाएगा,
चलाने वाला बनेगा। ज्ञान से तुम समझते हो, चित्र भी बरोबर बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, क्या कब था विष्णु, कब ब्रह्मा निकला? यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिन दोनों की संस्कार मिले हुए थे, स्वभाव संस्कार एक थे, एक ने कही और दूसरे ने
मानी।
वो विष्णु रूप था और जो भी थे सुनने वाले सब ने ये बात
मानी।
तो कौन कौन थे? प्रजापिता भी था, गीता माता भी थी, उम्र आधे बच्चे की थी, क्योंकि शिव अकेला तो आता नहीं, वो तो तीन मित्रियों के साथ है। फिर उनकी बात और किसने किसने मानी?
श्री कृष्ण,
राधा और कृष्ण जो बनने वाले हैं सतयुग में, उन्होंने भी उनकी बात मानी। तो सब के संस्कार मिलकर के एक हो गए। तो विष्णु था ना, कोई विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला। कब निकला?
आदि में
ही निकला ब्रह्मा। दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में कब से प्रत्यक्ष हुए?
सन 47।
जब से शिव ने प्रवेश किया उनमें तब से वो ब्रह्मा कहे गए। मैं प्रवेश करता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम
ब्रह्मा
पड़ता है। सन 47 से पहले तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम
नहीं पड़ा,
आ ही नहीं। कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ?
47-48 क्रांति से।
सन 47 से ब्रह्मा नाम पड़ा और सन 51-52 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। उससे पहले तो कोई ब्रह्मा को भी नहीं जानता था और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय को भी नहीं जानता। तो ज्ञान सागर न ब्रह्मा को कहेंगे न विष्णु को कहेंगे। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ज्ञान से चित्रभू गरुड़ बनाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, लेकिन इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकते जब तक बाप आकर न बना बता दे। ब्रह्मा को शास्त्रों में हाथों में शास्त्र दिखाए, क्या कोई ऐसा चित्र है कोई देवता का जिसके हाथों में शास्त्र दिखाए? ब्रह्मा को शास्त्रों में हाथों में शास्त्र दिखाए। अब शास्त्रों का सार तो बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा थोड़ी सुनाते हैं। क्या जो भी शास्त्र बने उन शास्त्रों का सार किसने सुनाया? उन सार सुनाया
नहीं, राम बाप दोबारा सुनाया।
जो सार रूप होगा सो सार सुनाएगा, जो विस्तार रूप होगा वो क्या करेगा?
विस्तार
करेगा। तो शास्त्रों का सार बाप आकर सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं?
बाप
सुनाते हैं। ब्रह्मा तो
नहीं।
माँ तो बड़ी माँ है,
बाप के द्वारा।
माँ जो है वो विस्तार है या बाप विस्तार है?
नहीं, माँ विस्तार।
सार कौन है और विस्तार कौन है?
माँ है विस्तार।
सार माँ है और विस्तार बाप है। धरणी किसे कहा जाता है? माताओं। दुनिया में जब सतयुग की शुरुआत होती है तो धरणी छोटी होती है या बड़ी होती है?
छोटी होती है।
फिर बाद में विस्तार को पाती जाती है। कलयुग के अंत में धरणी बहुत विस्तार को पा जाती है। जितने जितने बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे माता उतनी फैलती फूटती जाएगी। तो ये विस्तार और ये
सार,
वो है बाप और वो है माँ। तो पूछा अभी शास्त्रों का सार बाप सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाते हैं? कौन सुनाता है?
बाप सुनाते।
ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वो कोई भी यथार्थ चित्र नहीं है, वो है सब भक्ति मार्ग के चित्र। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले थोड़ी होते हैं, ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। समझाने के लिए रावण का भी अर्थ दिखाया है। आधा कल्प है रावण राज्य, उसको कहते हैं रात। आधा कल्प अज्ञान अंधकार फैलता है, आधा कल्प है राम राज्य दिन। रावण आता है तो रात फैलाता है, राम आता है
तो दिन
होता है। कब से दिन होता है? जब से राम वाली आत्मा संसार में राम के रूप में, राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो राम राज्य शुरू होता है। और जब से रावण वाली आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होती है 10 सिरों वाली, तब से दुनिया में अज्ञान की राख होती है। बाप हर एक बात समझाते हैं। इसमें भी नंबर वन बात है कि बाप को जो सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर फादरहुड कैसे हो सकता है।